चलिए एक आम इंसान के नजरिए से सोचें, मतलब जब किसी की हड्डी टूट जाती है और वो चिकित्सक के पास जाता है तो सबसे पहले क्या होता है?
वही एक्सरे निकालते हैं सबसे पहले।
हाँ बिल्कुल, एक्सरे या पारदर्शी चित्र, उसमें सब कुछ एकदम साफ और सटीक होता है ना। उस काले और सफेद चित्र में एक टूटी हुई हड्डी एक टेढ़ी लाइन की तरह बिल्कुल साफ दिखाई देती है।
सही बात है।
चिकित्सक बस उस पर इशारा करता है और कहता है कि देखिए ये रही समस्या और ये रहा इसका इलाज।
एग्जैक्टली।
ऐसी स्थितियां बिल्कुल दो टूक होती हैं। या तो हड्डी टूटी है या फिर नहीं टूटी है, इसमें राय या किसी अनुमान के लिए मतलब कोई खास जगह नहीं होती।
हाँ, वहाँ सब क्लियरली दिख रहा होता है।
और पता है यही स्पष्टता हमें एक अजीब सी शांति देती है। हमारी आदत बन चुकी है कि हर चीज को कैटेगरीज में बांट दे, हर तथ्य बिल्कुल साफ और सीधा हो, लेकिन
इतिहास में ऐसा नहीं होता।
बिल्कुल नहीं। यहाँ एक बड़ा मोड़ आता है जब हम प्राचीन इतिहास और हजारों साल पुराने धार्मिक दस्तावेजों की दुनिया में कदम रखते हैं तो अचानक वो सटीक तस्वीर निकालने वाली मशीन काम करना बंद कर देती है।
वहां चीजें धुंधली हो जाती हैं।
हाँ, क्योंकि हम ऐसी चीजों को देख रहे होते हैं जो समय के साथ काफी धुंधली हो चुकी हैं, जहां एक ही शब्द के कई अलग अलग अर्थ हो सकते हैं।
सही कहा आपने।
तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे ही गहरे रहस्य पर पर्दा उठाने वाले हैं। आज हमारा मुख्य विषय डॉक्टर क्रेग कीनर द्वारा प्रेतों के काम यानी जिसे बुक ऑफ एक्ट्स कहते हैं उस पर दिया गया पहला व्याख्यान है।
ये बहुत ही दिलचस्प विषय है वैसे,
है ना? इस चर्चा का मुख्य मकसद ये समझना है कि इस प्राचीन किताब को लिखने के पीछे आखिर किस शख्सियत का हाथ था, ये किस समय काल में लिखी गई और इसका असली ऐतिहासिक उद्देश्य आखिर था क्या।
इसे हम एक तरह की ऐतिहासिक जासूसी कहानी मान सकते हैं।
बिल्कुल, ये एक डिटेक्टिव स्टोरी ही है। चलिए एक चमत्कारी तथ्य से शुरुआत करते हैं। इस किताब के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रेतों के काम को आमतौर पर लूक का दूसरा भाग कहा जा सकता है।
हाँ, लूक पार्ट टू।
सही कहा। अगर ध्यान दिया जाए तो लूक के रचे सुसमाचार में ये बताया गया है कि जीसस ने अपने जीवन में कौन से महान काम शुरू किए, और ठीक उसके बाद इस दूसरी किताब में बताया गया है कि जीसस ने अपने अनुयायियों के माध्यम से अपने उस अधूरे काम को आगे कैसे बढ़ाया।
और यही इसकी सबसे बड़ी अहमियत है, क्योंकि अगर ये किताब ना होती तो ऐसा लगता जैसे किसी कहानी का पहला अध्याय पढ़कर सीधे आखिरी पन्नों पर पहुंच गए हैं,
मतलब बीच का हिस्सा गायब। ये किताब शुरुआती ईसाई समाज के मुख्य अभियान और पॉल द्वारा लिखे गए पत्रों को समझने के लिए एक बेहद जरूरी बैकग्राउंड तैयार करती है।
बिल्कुल, नए नियम के दस्तावेजों में कई पत्र हैं जो उस वक्त की समस्याओं पर चर्चा करते हैं, पर सिर्फ यही किताब एक धारावाही कहानी के रूप में सब कुछ पेश करती है।
तो आइए इस विषय की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इस किताब का लेखक कौन था, और इसका सबसे बड़ा सुराग कहीं बाहर नहीं, किताब के भीतर ही छिपा है,
जिसे हम का रहस्य कहते हैं।
हाँ वही। ये इतना अजीब है, जब इस किताब का 16वां अध्याय पढ़ा जाता है जहाँ यात्रा त्रुआस नाम की जगह से फिलिपी तक जाती है, तो कहानी में एक बेहद अजीब बदलाव आता है।
लेखक अचानक से भाषा बदल देता है।
बिल्कुल, वो सभी अनुयायियों को वो कहने के बजाय अचानक होम कहकर संबोधित करने लगता है, जैसे वो भी अचानक उनके साथ उस जहाज पर सवार हो गया हो।
और मजेदार बात यह है कि फिलिपी शहर छोड़ने के बाद ये हम वाला शब्द अचानक गायब भी हो जाता है,
वैसे ही जैसे आया था। और कई सालों बाद 20वें अध्याय में जब पॉल वापस फिलिपी आता है तब ये हम वापस लौट आता है।
ये थोड़ा सिनेमैटिक लगता है देखने में,
है ना? मतलब मैं सोच रही थी ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ट्रैवल व्लॉग में पीछे खड़ा कैमरा चलाने वाला अचानक फ्रेम में आ जाए, दो बातें बोले और फिर वापस कैमरा के पीछे छिप जाए।
ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है।
चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मेरा सवाल ये है कि बहुत से पढ़े लिखे लोग इस सीधी सी बात को इतना जटिल क्यों बनाते हैं? क्या ये सीधे तौर पर एक आम ट्रैवल डायरी नहीं हो सकती?
यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बड़े बड़े विद्वानों की आदत होती है कि वो आसान चीजों को मुश्किल बना देते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि ये एक काल्पनिक होमो हो सकता है।
काल्पनिक? पर क्यों?
उनका तर्क था कि शायद लेखक श्रोताओं को कहानी के भीतर का अनुभव देने के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन प्राचीन ऐतिहासिक लिखावटों में आमतौर पर ऐसे काल्पनिक शब्दों का प्रयोग नहीं होता था। ये कोई आधुनिक उपन्यास थोड़ी है।
सही बात है, ये कोई फिक्शन तो है नहीं।
जरा खुद सोचिए, अगर कोई लेखक सिर्फ कहानी को रोचक बनाने के लिए हम का प्रयोग कर रहा होता तो वो इसका इस्तेमाल तब करता जब कुछ महान और चमत्कारी घटित हो रहा था, जैसे जीसस का पुनर्जीवन या पेंटेकोस्ट का दिन।
ओ, हाँ, वो अपना नाम किसी बड़ी घटना से जोड़ता।
बिल्कुल, वो इस ब्रह्मास्त्र जैसी लिखावट का इस्तेमाल फिलिपी जैसे एक आम शहर की सामान्य नौका यात्रा के लिए क्यों करेगा? इसका कोई तुकी नहीं बनता।
ये बहुत ही ठोस और स्पष्ट तर्क है। मतलब अगर खुद को जबरदस्ती घुसाना ही है तो किसी महान युद्ध या चमत्कार वाले दृश्य में रखो, ना कि किसी छोटी सी नाव की यात्रा में जहां आम लोग जा रहे हैं।
आपने बिल्कुल सही पकड़ा इस बात को। प्राचीन इतिहास में हम शब्द का वही अर्थ होता था जो आज होता है। लेखक वहां सच में मौजूद था। ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का मामला है।
प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन मतलब एक एक करके लोगों को लिस्ट से हटाना।
हाँ, इतिहासकारों ने देखा कि उस समय पॉल के साथ कौन कौन से सहायक मौजूद थे। क्या वो एरिस्टार्कस था?
नहीं, क्योंकि 27वें अध्याय में एरिस्टार्कस को इस हम से अलग बताया गया है।
सही। क्या वो ईपाफ्रास था? ये भी संभव नहीं है। उस किताब में उसके इलाके में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है। क्या वो डेमस या टाइटस थे? इनको भी नकारने के ठोस कारण है।
तो घूम फिर कर सुई आखिर में एक ही नाम पर आकर रुकती है, और वो नाम है लूक।
बिल्कुल, और सबसे बड़ी मोहर तब लगती है जब हम देखते हैं कि प्राचीन ईसाई परंपरा भी यूनानिमसली यही मानती है कि लेखक लूक ही था।
हाँ, चाहे वो P75 पपायरस हो, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, या फिर इरेनियस, क्लेमेंट, ओरिजिन और टर्टुलियन जैसे प्राचीन इतिहासकारों, सबका यही विश्वास था।
और पता है सबसे मजेदार बात क्या है यहाँ?
क्या?
उस दौर में लूक कोई बहुत बड़ा मशहूर या शक्तिशाली नाम बिल्कुल नहीं था।
अगर किसी को झूठ बोलकर कोई नाम इस दस्तावेज पर चिपकाना ही होता तो वो किसी बहुत बड़े और मशहूर नेता का नाम लेता।
हाँ, जिसे सब जानते हो। एक सामान्य व्यक्ति का नाम कोई जानबूझकर इतनी महान रचना पर क्यों लगाएगा? ये बात तो गले नहीं उतरती।
ये बहुत ही गहरा विश्लेषण है। बाहरी और आंतरिक प्रमाण दोनों एक ही दिशा में इशारा करते हैं। P75 पपायरस, जो 3री शताब्दी का एक प्राचीन कागज है, उस पर लूक का नाम लिखा मिलता है। एक और दस्तावेज है एंटी मार्सियोनाइट प्रोलॉग, उसमें भी लूक को ही लेखक माना गया है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? जब ये तय हो गया कि लेखक लूक था, तो अगला सवाल तो यही है ना कि लूक आखिर था कौन? उसकी प्रोफाइल ने इस किताब को कैसे प्रभावित किया?
बिल्कुल, अगर हम प्राचीन पत्र पढ़ें, विशेषकर कोलोशियंस का 4वां अध्याय, तो पता चलता है कि लूक पेशे से एक चिकित्सक या वैद्य था।
एक डॉक्टर? पर आज के डॉक्टर्स और उस जमाने के वैद्यों में तो जमीन आसमान का फर्क होता था ना?
जरूर, उस जमाने में मेडिकल साइंस थोड़ा अलग था। अनुभव जनित आंकड़ों और अंधविश्वास का एक अजीब सा मिश्रण।
अंधविश्वास कैसा?
मतलब ऐसी किताबें और नुस्खे थे जिसमें गेंदे की आंखों का पाउडर या चुड़ैल के कड़े जैसी चीजें लिखी होती थी। लोगों को लगता था बीमारियां बुरी आत्माओं से होती हैं।
बाप रे, गेंदे की आंखों का पाउडर, ये तो बहुत अजीब है।
लेकिन उसी दौर में कुछ पढ़ी लिखी और सटीक प्रणालियां भी थी, जैसे मेथडिस्ट स्कूल। ये लोग मंत्र तंत्र के बजाय मरीज के शरीर और लक्षणों का बारीक विश्लेषण करते थे। ऐसे पढ़े लिखे चिकित्सक का अलग ही दर्जा था।
और उस पढ़ाई लिखाई का असर हमें लूक की भाषा में साफ झलकता हुआ दिखता है। लेखक की भाषा अत्यंत पढ़ी लिखी है। उसने मार्क की ग्रामर तक को बेहतर किया था।
हाँ, उसने असंगतियों को सुधारा। हालांकि अगर हम पॉल के बोलने और लिखने की वक कला देखें तो वो लूक से थोड़ी ज्यादा ऊंची लगती है।
एक और दिलचस्प पहलू ये है कि लूक शायद एक गैर यहूदी था, जिसे भूमध्य सागर के तटीय भागों की बेहतरीन जानकारी थी, और वैद्य होने के नाते वो महिलाओं के साथ काम करता था, इसलिए उसकी लिखावट में महिलाओं के प्रति एक अलग सम्मान दिखता है,
जो सदी के कट्टर समाज के हिसाब से बहुत ही प्रगतिशील बात थी। और इसी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। ये किताब थियोफिलस को समर्पित है।
थियोफिलस, ये कौन था?
इसे एक ऐसे खिताब से संबोधित किया गया है जिसका मतलब परम सम्मानित होता है। इसका सीधा अर्थ है कि वो एक अमीर और ऊंचे तबके का संरक्षक था, एक पेट्रन।
तो इसका मतलब उस दौर में आम लोगों के लिए इतनी लंबी किताब लिखना आसान नहीं रहा होगा।
बिल्कुल असंभव था। महंगे कागज और लिखने वालों की जरूरत होती थी। ये कोई सस्ती पत्रिका नहीं थी, बल्कि एक पढ़े लिखे ऑडियंस के लिए तैयार किया गया ऐतिहासिक दस्तावेज था।
लेकिन रुकिए, यहाँ मैं एक बड़ा विरोधी तर्क रखना चाहती हूँ। अगर लूक इतना ही पढ़ा लिखा था और पॉल का साथी था, तो एक बड़ा विरोधाभास है यहाँ। एक्ट्स और पॉल के अपने पत्रों के बीच इतनी डिस्क्रिपेंसीज क्यों हैं?
किस तरह की डिस्क्रिपेंसीज?
जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एक्ट्स में पॉल कानून और परंपराओं के पक्ष में दिखाया गया है, जबकि पॉल के अपने लेटर्स में वो उन कानूनों के खिलाफ लगता है। अगर लेखक सच में पॉल का सबसे अच्छा दोस्त था, तो उसने अपनी कहानी में उसके विचारों को इतना अलग क्यों पेश किया?
देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन यहाँ ऐतिहासिक संदर्भ समझना होगा। ये जो फर्क है वो एजेंडाज और एम्फेसिस का फर्क है, किसी गलत बयानी का नहीं।
मतलब चीजें छिपाई नहीं गई, बस पेश करने का तरीका अलग था।
हाँ, जैसे सिसरो को ही ले लीजिए। जब हम सिसरो के निजी पत्र पढ़ते हैं और बाद में उस पर लिखे गए इतिहास को देखते हैं तो जमीन आसमान का अंतर मिलता है। इतिहासकार हमेशा श्रोताओं के हिसाब से चुनिंदा डिटेल्स देते हैं।
अच्छा, तो मकसद अलग था।
और वहां तक पॉल के कानून के खिलाफ होने की बात है, नए विद्वान अब ये मानते ही नहीं कि पॉल कानून के पूरी तरह खिलाफ था। ये पुरानी और चिचली समझ थी।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि लूक ने सिर्फ उन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जो उसकी कहानी और ऑडियंस के लिए जरूरी थी। चलिए अब इस चर्चा को एक और उलझे हुए सवाल की तरफ मोड़ते हैं, समयकाल। इस किताब की रचना कब हुई थी?
समयकाल तय करना बहुत जरूरी है। इसको लेकर दो मुख्य विचारधाराएं हैं। एक गुट कहता है 70 ईस्वी से पहले और दूसरा मानता है 70 से 90 के बीच। ज्यादातर विद्वान इसे 70 और 80 के दशक के आसपास ही मानते हैं।
लेकिन इस बाद वाले टाइमलाइन का ठोस प्रमाण क्या है? मैं कैसे मान लूं कि ये 70s में लिखी गई?
सबसे बड़ा प्रमाण लूक के 21वें अध्याय में मिलता है। अगर मार्क के 13वें अध्याय को देखें तो वहां जीसस की वापसी और मंदिर के टूटने को एक साथ जोड़ा गया था, लेकिन लूक ने इन दोनों घटनाओं को अलग कर दिया।
उसने कुछ खास लिखा था क्या वहाँ?
हाँ, उसने लिखा, तुम जेरूशलम को सेनाओं से घिरा हुआ देखोगे।
वेट, क्या सेनाओं से घिरा हुआ? ये तो सीधा सीधा 70 ईस्वी में रोमी सेना द्वारा यरूशलम की तबाही की तरफ इशारा कर रहा है।
बिल्कुल, इसका मतलब लूक ये दस्तावेज उस तबाही के बाद लिख रहा था। उसने भविष्यवाणी को एक सटीक ऐतिहासिक तथ्य में बदल दिया।
ओ वाओ, और एक तर्क ये भी है ना कि लूक ने मार्क को एक स्रोत के रूप में यूज किया था जो लगभग 64 ईस्वी में लिखी गई थी। उस किताब को सर्क्यूलेट होने में और लूक तक पहुंचने में लंबा समय तो लगा ही होगा।
सही कहा, इसलिए 70 का दशक बिल्कुल सही बैठता है।
लेकिन रुकिए, यहाँ एक दिमाग घुमाने वाला सवाल उठता है। अगर ये किताब 70 के दशक में लिखी गई तो इसका मतलब ये पॉल की मौत के बाद लिखी गई?
हाँ, पॉल को लगभग 64 से 67 के बीच मृत्युदंड मिला था।
कि मौत का कोई जिक्र किए बिना अचानक से क्यों खत्म हो जाती है? ये तो वही बात हुई कि महाभारत की कहानी कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से ठीक पहले रोक दी जाए।
मौत की खबर क्यों छिपाई गई?
अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो समझ आएगा कि एक्ट्स कोई बायोग्राफी नहीं है, ये चर्च के मिशन और विस्तार का इतिहास है।
पर पॉल तो इतना बड़ा हिस्सा था उस मिशन का।
था, पर लूक को अपनी किताबें पॉजिटिव लीगल प्रेसिडेंस के साथ खत्म करना पसंद था।
रोम में मृत्युदंड बहुत क्रूर होता था।
अगर वो आखिर में बताता कि रोमी साम्राज्य ने पॉल को राजद्रोही मानकर मार दिया तो वो पॉजिटिव नैरेटिव वहीं टूट जाता।
अच्छा,
वो एक निराशाजनक एंडिंग होती जो लूक नहीं चाहता था।
बिल्कुल,
यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अगर किताब 70 के दशक में पॉल की मौत के बाद लिखी गई और मौत छुपा ली गई तो इसका असली मकसद क्या था? यहाँ से हमें इसका असली अपोलोजेटिक एजेंडा यानी बचाव का दृष्टिकोण समझ आता है।
यही सबसे गहरा हिस्सा है इस चर्चा का।
हाँ, क्योंकि किताब का आखिरी एक चौथाई हिस्सा सिर्फ पॉल की कैद और उसके डिफेंस स्पीचेस पर ही तो फोकस्ड है।
सही पकड़ा, पॉल पर दंगे भड़काने और राजद्रोह यानी सिडिशन के आरोप थे। 24वें अध्याय में यह साफ लिखा है, रोम में राजद्रोह की सजा मौत थी। लूक ने बड़ी चतुराई से दिखाया कि दंगे पॉल ने नहीं बल्कि उसके विरोधियों ने भड़काए थे।
ये तो प्राचीन काल की एक डिफेंस टेक्निक लग रही है मुझे, आरोप को आरोप लगाने वालों पर ही मोड़ देना, जैसे आजकल PR कैंपेन्स होते हैं।
बिल्कुल वैसे ही था ये, अर्ली चर्च के लिए एक PR कैंपेन।
पॉल की मौत के बाद उसकी लेगेसी खतरे में थी ना, वो जेंटाइल्स का नेता था। अगर लोग मानते कि वो मुजरिम है तो उसके अनुयायियों पर भी खतरा आ जाता। कुछ लोग तो डर के मारे उससे अलग होना चाहते होंगे।
हाँ, ताकि उनकी जान बच सके।
तो जैसे लूक ने पहले हिस्से में दिखाया कि जीसस रोम के खिलाफ विद्रोह के दोषी नहीं थे, वो साबित कर रहा था कि पॉल भी दोषी नहीं था, वो निर्दोष था।
मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये जॉनरा एक हिस्टोरिकल मोनोग्राफ है, ये मनोरंजक और सूचनात्मक होने के साथ साथ सब्सटैंशियली एक्यूरेट इतिहास पेश करती है। इसका सबसे बड़ा मकसद अर्ली चर्च और पॉल की लेगेसी का बचाव करना था,
ताकि अमीर और पढ़े लिखे समाज को ये समझ आए कि इन लोगों ने रोम का कोई कानून नहीं तोड़ा है, ये शांति प्रिय लोग हैं।
सही बात है।
तो इस विस्तृत चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे हम शब्द एक ट्रैवल जर्नल की तरफ इशारा करता है, कैसे लूक जैसा पढ़ा लिखा डॉक्टर इसका लेखक तय होता है,
और कैसे इसकी क्रोनोलॉजी 70 के दशक में बैठती है।
हाँ, और सबसे बड़ी बात, कैसे ये किताब सिर्फ एक इतिहास नहीं बल्कि पॉल और अर्ली क्रिश्चियन मिशन की एक मजबूत और स्ट्रेटेजिक ऐतिहासिक डिफेंस है।
इस पूरी चर्चा से साफ हो जाता है कि प्राचीन दस्तावेज अपने अंदर कितने गहरे रहस्य और छिपे हुए मकसद दबाए रखते हैं।
बिल्कुल। तो अब इस चर्चा के अंत में मैं एक नया और दिमाग को झकझोर देने वाला विचार छोड़ना चाहती हूँ श्रोताओं के लिए। अगर बुक ऑफ एक्ट्स जैसी किताब एक महान ऐतिहासिक दस्तावेज होने के साथ साथ अपने समय की एक पीआर और डिफेंस स्ट्रेटजी भी थी,
तो आज हम जो इतिहास पढ़ते हैं उसमें क्या क्या छिपा होगा।
वही तो, ऐसे कितने छुपते हुए मकसद और एजेंडाज हैं जो हमारी आंखों के सामने हैं पर हमें दिखाई नहीं देते। क्या इतिहास वाकई कभी पूरी तरह तटस्थ या न्यूट्रल होता है, या फिर हर इतिहास किसी न किसी लेगेसी को बचाने के लिए लिखा गया है?
ये बहुत ही गहरा सवाल है जिसमें सोचने जैसा बहुत कुछ है।
सही में, इस विषय पर सबको खुद और आगे पढ़ने और सोचने की आवश्यकता है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।